भाई जी, भाई जी मतलब एल्डर ब्रदर जैसे बोलते हैं भाई जी, उन्होंने प्रभुपाद को कई बार चिट्ठी लिखा और प्रभुपाद के सारे काम को सराहाया, ग्लोरीफाई किया। और कल्याण कल्पत्र, उनका कल्याण एक मंथली मैगजीन निकलता है, उसमें प्रभुपाद के सारे एक्टिविटीज कान की उसने छापी और प्रभुपाद और भक्तों को इनवाइट किया गोरखपुर में। तो गोरखपुर में हनुमान प्रसाद का अभी भी एक बगीची है जहां उनका पुराना आस्थान है, प्रभुपाद वहां रहे थे, वो कमरा वहां है, गए एक बार देखने थे। तो वहां भक्त कहीं से सुन के आए, नए नए भक्त थे, वेस्टर्न भक्त प्रभुपाद के संग थे, तो वो गा रहे थे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने प्रणत कालेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो प्रभुपाद ने कहा आई विल टीच यू न्यू सॉन्ग, कम आइए आपको नया भजन सिखाते हैं। ऐसे नहीं कहा मत गाओ ये, लेकिन प्रभुपाद वांटेड टू से आई एम टीचिंग यू समथिंग हायर, दिव्य प्रभुपाद सेड। एंड देन प्रभुपाद फर्स्ट टाइम जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी, ये भजन पहली बार गाया। और वहां से ये भजन हर प्रवचन से पहले नेम बन गया, इस्कान का फॉर्मेट बन गया। इस्कान की स्थापना 66 में हुई है, लेकिन ये भजन 71 के बाद आया है इस्कान के सत्संग में। तो कोई महात्मा कमेंट कर रहे थे प्रभुपाद ने राधा और कृष्ण को स्मरण हर सत्संग से पहले इस भजन के द्वारा किया। ये भजन असल में वृंदावन का दर्शन है। ये भजन में जो तीन लाइन है भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा ये गाया हुआ भजन है, इसमें वृंदावन का दर्शन है। राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज कहते हैं वृंदावन के अंदर जो फॉरेस्ट हैं, उनमें जो पेड़ हैं ट्रीज, वो ट्रीज ऊपर सीधे ऊपर नहीं जाते हैं, वो भगवान के चरणों से दूर नहीं होना चाहते, चरण चिन्ह जो फुट मार्क्स हैं भगवान के, तो वो पेड़ ऐसे नीचे झुकते हैं, बेंड डाउन होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सुंदर से रूम बन जाते हैं, उनको कुंज बोलते हैं। और रूमों के अंदर और रूम होते हैं, उसको निकुंज बोलते हैं। तो राधा और कृष्ण ऐसे कुंजों में विहार करते हैं, दे हैव देयर पास टाइम इन दीज फ्लावर ग्रूव्स, और वन देवी उनको फूलों से नीचे सजाती है गलीचे की तरह। राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ, श्री कृष्ण कैसे हैं गोपीजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ गोपीजनों के बहुत प्रिय हैं, अथवा जिनसे गोपियां अति अधिक प्रेम करती है, गोपियों के प्राणधन है प्राणनाथ, तो गोपीनाथ बोलते हैं, गोपीनाथ का मतलब गोपियों के प्राणनाथ। गोपीजन वल्लभ गोपियों से प्रेम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण है, राधा रानी का स्मरण है और सब गोपियों का स्मरण है। तो गोपियों से प्रेम करते हैं गिरिवरधारी, इतना प्रेम करते हैं कि अपने प्रेमियों के ऊपर कोई संकट आ जाए, कोई ट्रबल आ जाए, तो भगवान उनके लिए पहाड़ भी उठा देते हैं। भगवान ने गिरिधर गोवर्धन पर्वत को उठाया, गोवर्धन पर्वत को उठाया भगवान ने, क्योंकि इंद्र ने वर्षा की और सबको डुबाना चाह रहा था, और भगवान ने सबकी रक्षा की। जिनसे प्रेम करता है उनकी भगवान रक्षा करता है, जो भगवान से प्रेम करते हैं उनकी भगवान रक्षा करते हैं, जो भगवान से प्रेम करता है उनकी भगवान रक्षा करते हैं। तो भगवान से जो प्रेम करता है उनको भक्त बोला जाता है, और तभी भगवत गीता में भगवान ने कहा है नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है क्योंकि मैं उसकी रक्षा करता हूं, क्योंकि भक्त मुझसे प्रेम करता है। भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेममयी सेवा, भक्ति के अंदर प्रेम अपने आप आ जाता है। आगे जगह है, माता जी लोग आप जो यहां बैठे हैं आप सब नीचे आ जाए, ताकि पीछे आने वाला बैठे किसी को डिस्टर्ब न करें। ये जो आगे 5-7 माता जी आप सब यहां आ जाइए, आप बेटा आप सब लोग शाबाश आगे आ जाइए, आगे की आठ दस माता जी यहाँ आ जाइए, ये सारी जगह खाली है। हरे कृष्ण। आप बच्चों को बिजी रखें तो आ रह सकती है पूनम जी, बाकी सब आ जाए इधर, क्यों पीछे जगह खाली रखो, कोई भी आए तो बैठ सकता है। गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी यशोदा नंदन, अभी वहां भी सत्संग में हमने ये बात की थी, भगवान का अपियरेंस होता है ना, अपियरेंस डे, तो कृष्ण का अपियरेंस कहां हुआ और कृष्ण का जन्म कहां हुआ, ये रहस्य है बहुत, इट्स वेरी सीक्रेट। भगवान का अपियरेंस कहां हुआ, भगवान कहां प्रकट हुए, कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए थे। अपियर्ड का मतलब चार हाथों के विष्णु के रूप में अपियर हुए, उसको बोलते हैं अपियरेंस। लेकिन कृष्ण का जन्म कहां हुआ, यशोदा के घर में, यशोदा के घर में कृष्ण का जन्म हुआ और अपियरेंस कृष्ण का हुआ वसुदेव और देव, दोनों में अंतर है, बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। वो वसुदेव कृष्ण है और वसुदेव कृष्ण चतुर्भुज हैं, विष्णु स्वरूप है, और यशोदा नंदन भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, गोलोक निवास करने वाले स्वयं श्री कृष्ण यशोदा नंदन है। तो यशोदा नंदन का जन्म हुआ, वसुदेव कृष्ण का अपियरेंस हुआ। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जीव गोस्वामी ने इस सब्जेक्ट को बहुत गहराई से समझाने का प्रयास किया है। तो यशोदा नंदन नंद नंदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और उनका स्वरूप क्या होता है, गोपाल स्वरूप, वो हमेशा गोप स्वरूप में रहता है। उनका रूप गोलोक में वो कैसे रहते हैं, जिस रूप में वो माधवेंद्रपुरी के सामने प्रकट हुए थे। आप लोगों को माधवेंद्रपुरी की कथा मालूम है, माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड, जहां भगवान श्री कृष्ण का इंद्र ने आके सुरभि गाय से अभिषेक किया था, उस स्थान के ऊपर माधवेंद्रपुरी बैठे थे तीन दिन तक, कहीं गए नहीं, भगवान के भजन में आनंद में थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि राधा कृष्ण के तत्व को माधवेंद्रपुरी जानते हैं, मैं जानता हूं, और कोई जानता है कि नहीं जानता है मालूम नहीं। हमारी संप्रदाय गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का मध्व संप्रदाय के साथ जो संबंध है वो माधवेंद्रपुरी है। माधवेंद्रपुरी इज ए कनेक्शन बिटवीन मध्व संप्रदाय एंड गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, उसके माध्यम से हम कनेक्टेड हैं मध्व संप्रदाय से। और राधा कृष्ण भक्ति का जो जो रूट है, जो जो मेन स्रोत है, वो माधवेंद्रपुरी। राधा कृष्ण की भक्ति मध्वाचार्य की संप्रदाय में नहीं होती, ये विशेष है। अब वो जब वहां बैठे भजन कर रहे थे तो एक गोपाल काउहर्ड बॉय, गाय चराने वाला, क्या अवस्था का, वो 10-12 साल का, हाथ में लाठी ऐसे लिया हुआ गाय चराने की, दूध का लोटा हाथ में लिया, बोला बाबा आपने तीन दिन से कुछ खाया नहीं है, आप दूध पी लीजिए। माधवेंद्रपुरी आंखें खोल के देखते हैं तो उस बच्चे को देखते ही रह गए, वो इतना सुंदर था, तुम्हें कैसे पता लगा मैंने नहीं खाया है। बच्चा बोलता है यहां पानी भरने आती है माताजी, वो देखती है आप यहां से कहीं गए नहीं हो। साधु जाते हैं मधुकरी करने के लिए, मधुकरी मधुमक्खी की तरह घर घर से जाके कुछ भिक्षा लेते हैं, लेकिन आप तो कहीं गए नहीं। इसलिए हमारे इस वृंदावन में कोई भूखा नहीं रहता है, इसलिए माताजी ने आपके लिए दूध भेजा है। तो वो जो स्वरूप है वो गोप स्वरूप, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो भागवत में कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, बाकी सब अवतार है, अंश है, कला है, एक्सपेंशन एंड अप देर एक्सपेंशन एंड पार्ट एंड अप देर प्लेनरी पोर्शन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोप वेश में ब्रज में गोवलोक में सदा निवास करता है, वो यशोदानंदन है। उसका जन्म होता है, उसका जन्म हुआ है यशोदा के घर में, और वसुदेव कृष्ण को वसुदेव ले गया, वो उसके अंदर एंटर हो गए, ही एंटर इनटू दैट यशोदानंदन। और जो एंटर हुए थे वो निकल के मथुरा चले गए, वो फिर द्वारका चले गए, लेकिन यशोदानंदन कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाते, वो वृंदावन में रहते, एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते वो। तो यशोदानंदन कृष्ण जो गोपाल कृष्ण है वो 16 शक्ति संपन्न है, मथुरा में 15 शक्ति काम करती है और द्वारका में 14। तो द्वारका में कृष्ण पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर और वृंदावन में पूर्णतम है। तो ये कृष्ण के रहस्य। तो यह गोपीजन वल्लभ गिरिवरधर यशोदानंदन। कभी कभी कुछ गौड़िया वैष्णव दूसरे थोड़ा सा ईर्ष्या के कारण प्रभुपाद के लिए कहते हैं कि कृष्ण बुक ने प्रभुपाद ने वसुदेव कृष्ण को ही लिखा है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो यशोदा कृष्ण उसका वर्णन नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने भागवत के पोपट में इस विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और जीव गोस्वामी के आधार के ऊपर यशोदा और नंद बाबा ने द्वादशी का व्रत किया 12 महीने 12, ये जीव गोस्वामी के गोपाल चंपू में है कि 12 महीने द्वादशी व्रत किया और फिर नंद बाबा के हृदय में नीलमणि भगवान श्री कृष्ण प्रवेश हुए। ये कथा दो बहुत बड़े गाने वाले मधुकंठ और स्निग्धकंठ के नाम से ये कथा बताते हैं, और ये मधुकंठ और स्निग्धकंठ ये दो वो नल कुबेर और मणिगिर ये दोनों वो बेटे हैं जिनका भगवान ने उद्धार किया। अब वो ये गान करते हैं कृष्ण लीला का, तो वो ये कथा बता रहे। तो यशोदा ने भी जन्म दिया बच्चे को, उसके दो कारण और भी लिखते हैं। एक कारण तो ये लिखते हैं जात कर्म संस्कार नंद बाबा ने संपन्न किया बच्चे का। जात कर्म संस्कार का मतलब है मां और बच्चे का जो नाड़े के साथ संबंध होता है ना, बच्चे का जन्म होता है तो एक जो बच्चे को खाना मिलता है जो प्लेसेंटा और बच्चे के नाभि के बीच में नाड़ा होता है उसको काटते हैं, उसको बोलते हैं जात कर्म संस्कार। तो अगर वसुदेव कृष्ण का जात कर्म संस्कार नंद बाबा कैसे करेंगे? क्या नाड़ा बंधे हुए वासुदेव लाए थे क्या वहां से, मथुरा से नाड़ा साथ लाए? तो इसे तो नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब वहां जो जन्म हुआ श्री कृष्ण का उसका नाड़ा उसका जात कर्म संस्कार नंद बाबा ने किया। एक तो ये कारण बताते हैं, जात कर्म संस्कार किया का मतलब वो नस्ल वो काटा, कनेक्शन काटा, तो वह जन्म हुआ होगा तब कटेगा ना, मां के पास में होगा तब कटेगा ना, तो मथुरा से लाएंगे उसका तो नहीं कर सकते। और दूसरा भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी अनुजा के रूप में यशोदा की बेटी होकर योग माया तुम प्रकट हो जाओ। अनुजा कहते हैं छोटी बहन को, तो बड़ा भाई होगा तब छोटी बहन होगी ना यशोदा की, छोटी बहन के रूप में आप जन्म लो। ये भगवान ने कहा आप मेरी अनुजा, अनुजा का मतलब छोटी बहन, तो छोटी बहन कैसे होगी जब भाई नहीं, बड़ा होगा तब ना। तो इसका मतलब वसुदेव, तो इसका मतलब यशोदा ने बच्चे को जन्म दिया जो बड़ा था, और उसके बाद बच्ची को जन्म हुआ जो छोटी थी, इसलिए उसको अनुजा बोलते हैं। क्योंकि हमने पूछा कि सुभद्रा की माँ कौन है, हमने बोला वैसे जो भी हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यशोदा ने उसको जन्म दिया, वो योग माया है, अनुजा तो वही योग माया प्रकट हुई है वो, तो ये अनुजा है। तो भगवान और भी कई कारण लिखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो नंदनंदन है, यशोदा नंदन है, वो स्वयं भगवान है जो ब्रज से बाहर कभी नहीं जाते और जिसको कोई भगवान नहीं मानता है, जिसको सब अपना संबंध से बच्चा मानते हैं, भाई मानते हैं, मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं, प्रेमी मानते हैं, जो ब्रज के अंदर ही ये है और कहीं नहीं है। यशोदा और देवकी और वसुदेव वो तो भगवान को प्रणाम करते हैं, उनका तो ऐश्वर्य का भाव है, माधुर्य का भाव उनका नहीं है। नंद और यशोदा विष्णु की पूजा घर में करते लेकिन कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं, भगवान नहीं मानते, बोलते भगवान वो है हमारा लक्ष्मी नारायण, ये तो हमारा बेटा है, उनकी ये मान्यता है। तो यशोदा नंदन क्या करता है, ये सब ब्रज जन रंजन, ब्रजवासियों को आनंद देता है। काम क्या करता है? ब्रज जन रंजन, ब्रजवासियों को आनंद देता है। कैसे? सघोषम, क्या हम पढ़ेंगे थोड़े दिनों के बाद, कार्तिक आएगा ना, क्या है दूसरी लाइन? सघोषम वाला लाइन क्या है? नमामि ईश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमान यशोदा बिजू लोकला धावनाम प्राम सत्यन्द्रत्य गोपया। फिर मुहर चुंबितम, इसके बाद सघोषम निबंजनतम आख्याप्ययंतम, फिर आनंद कुंडे सघोषम, ये जो शब्द है ना, इतिद्रक लीला भी आनंद कुंडे सघोषम निबिजंतम आख्यपयांतम इति स्वलीला भी, ये लीला क्यों कर रहे हैं? ब्रजनों को आनंद, कौन सा आनंद? आनंद कुंड, कुंडे का मतलब आनंद के समुद्र में डुबा देते हैं, ये लीला वहां करते हैं कृष्ण, ब्रजजन रंजन, ये ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए ऐसी लीला करते हैं। सघोषम अपने गोकुलवासियों के लिए ये लीला करते हैं। ये दामोदर लीला द्वारका में नहीं हो सकती, मथुरा में नहीं हो सकती, कोई कृष्ण को बांध नहीं सकता है कहीं और, ये जो लीला है और कहीं नहीं हो सकती। और उसी भागवत में लिखा है भगवान गोपी का सुतम, ये जो गोपी सुत कृष्ण है इसको जानना मुश्किल है, ये ज्ञान से नहीं मिल सकता है। गोपी का सुतम, भगवान गोपी का सुतम, तो ये जो है ये क्यों लीला करते हैं? ब्रज जन रंजन, ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए। कहां है ब्रज? जमुना तीर वन चारी। ब्रज क्या है? कि जिसके अंदर से जमुना बहती है, दोनों तरफ से 12 वन है, 5 वन एक तरफ से और 7 वन दूसरे तरफ, ये सारा ब्रज है। ये ब्रज के वनों के अंदर भगवान क्या करते हैं? वन चारी, चारी का मतलब है विचरण करना, मतलब वॉकिंग, हर एक वन के अंदर भगवान चलते हैं, और ऐसा एक भी धूलि का कण नहीं है जिसके ऊपर भगवान का चरण नहीं पड़ा हो। तो ब्रजन रंजन का मतलब, ओ यमुना तीर वनचारी का मतलब है भगवान पैदल पूरे वृंदावन के 12 वनों में घूमे हैं, इसलिए वहां की जो रेती है, ब्रज की रज है, ये तीन चीजें आज भी वही हैं वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण के समय में थी। गिरिवर गोवर्धन गिरिधारी आज भी वही है, कोई नहीं कह सकता है पहले यहां गिरिराज था, वो अभी तक यही पड़ा है। यमुना वही है और ब्रज की रज भी वही है जहां भगवान चले थे, वो धूलि का भी कहीं कहीं क्या उठ के चली को नहीं गई, तो ये तीन चीजें अभी वहां की वहां है। और ये भजन गाने का अर्थ है हमारा मन वृंदावन को दर्शन करे, मन की आंख से वृंदावन को देखना है इस भजन के द्वारा। क्यों ऐसे देखना है? इसलिए देखना है कि जहां हम जब वृंदावन को देखेंगे तो उसके अंदर कृष्ण दिखेंगे, क्योंकि वृंदावन से कृष्ण कभी बाहर नहीं जाते। चेतना महाप्रभु कहते हैं औरों का मन और हृदय में अंतर है, लेकिन मेरा मन वृंदावन, मोर मन वृंदावन, मेरा मन वृंदावन है, मेरे मन में वृंदावन बसता है। तो चेतना महाप्रभु ने हमको सिखाया है कि हर समय हम अपने हृदय को वृंदावन बना के रखें, तो कृष्ण अपने आप उसके अंदर आएंगे और उसको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के जीवन में कुछ जगहों पर केवल राधा माधव गाया प्रभुपाद ने, और उसके आनंद में इतने मगन हो गए, आंखों से दो आंसू गिरे और फिर कुछ नहीं बोला, प्रवचन नहीं दिया, और फिर कीर्तन किया और प्रोग्राम समाप्त हो गया। तो ये भजन जो उच्च स्तर के वैष्णव गण जो रसिक होते हैं ये भजन गाते हैं तो वृंदावन के भाव में इतने मगन हो जाते हैं कि भगवान की लीलाएं उनके हृदय के ऊपर ऐसे आ जाती हैं कि उनको फिर और कुछ बोलने की आवश्यकता, बोल भी नहीं सकते। प्रभुपाद दो जगहों पे ऐसे उनके प्रवचन के दौरान केवल इस भजन को करते हुए आनंद में मगन हो गए। तो ये पहले ऐसे अद्भुत वैष्णव आचार्य हैं भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, जिन्होंने राधा कृष्ण का स्मरण, वृंदावन का स्मरण सुबह रोज भागवत से पहले और शाम को भगवत गीता से पहले सारे इस्कान के मंदिरों में शुरू किया। जहां जहां इस्कान का मंदिर है वहां वृंदावन वृंदावन है, ये प्रभुपाद ने वृंदावन की आउट पोस्ट पूरी दुनिया में बना दी। जो हम राधा कृष्ण का, कृष्ण बलराम जी का दर्शन करके पूजा करते हैं, ये सब वृंदावन में निवास के समान है। तो प्रभुपाद ने इतना सरल वृंदावन को हमारे लिए बना दिया। ये भजन गाना, जो भाग्यशाली वृंदावन गए हैं उनको दर्शन करना चाहिए वृंदावन का इस तरीके से, और जो नहीं भी गए हैं केवल इन शब्दों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा और वृंदावन और यशोदा और नंद बाबा, इनका हृदय में चित्र, इनका 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 दर्शन हृदय में करना चाहिए। ये रील हृदय के अंदर चलनी चाहिए। तो ये भजन गाना इस्कॉन की एक परिपाटी है, और प्रभुपाद की शिक्षा, सुबह भागवत का सत्संग, शाम को भगवत गीता, और सोने से पहले कृष्ण परम पुरुष भगवान, इसको पढ़ो। ये तीन काम करने से कभी भी माया हमको छू नहीं सकती। लेकिन बहुत मुश्किल से बहुत कम लोग हैं ये तीन काम कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है कि वी आर नॉट सिंपली कमिटिंग। ये तीन काम करने में हमको बहुत बड़ी कठिनाई हो रही है। अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा और मंदिर किए ठाकुर जी दिखा के सिर्फ पैसे इकट्ठे करने हैं, प्रभुपाद इसके अगेंस्ट में है। अवर टेम्पल्स आर नॉट टू शो द ड्यूटीज एंड कलेक्ट मनी। इसके लिए हमारे मंदिर नहीं है। हमारे मंदिर हैं आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए। ये स्कूल है, ये यूनिवर्सिटीज हैं, जहां दिव्य शिक्षा दी जाती है गीता और भागवत की। तो ये अगर नहीं है और लोग आएंगे, देखेंगे थाली के अंदर कुछ फल लाएंगे और चढ़ाएंगे चले जाएंगे, तो ये तो इसको कहते हैं रिचुअलिस्टिक टेम्पल हो गया। आध्यात्मिकता उसमें से समाप्त होती जाएगी, उसमें आध्यात्मिकता का अभाव होने लगेगा। तो अति आवश्यक है समय निकाल के मंदिरों के अंदर ये सत्संग निश्चित रूप से होना चाहिए। सत्संग का न होना हमारी आध्यात्मिकता देवाले की निशानी है। देवाला समझते हैं, बैंक्रप्सी, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है। शास्त्र नहीं है, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज फैनेटिज्म। फैनेटिज्म, हम फैनेटिक होते जाते हैं। कितने फैनेटिक हैं, कभी हम कहते हैं इस्कॉन आतंकवादी, आतंकवादी के मतलब टेररिस्ट जैसे हम होते जा रहे हैं। वी आर नॉट, प्रभुपाद के मूड को हमने समझा नहीं। पहले प्रभुपाद जी पहले अमेरिका में एक महीना पूरा शैली और गोपाल अग्रवाल के घर में रहे। उसी फ्रिज में मांस होता था, मीट था, उसी फ्रिज से प्रभुपाद सब्जी निकालते थे, उसी के घर में बनाते थे, उनको भी पका के खिलाते थे, खुद भी खाते थे। और एक दिन शैली ने कहा, महाराज आप आज जल्दी आ गए, हमने तो घर में मांस पकाया था, उसका दुर्गंध आ रही है। प्रभुपाद ने कहा डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। कितना एडजस्ट किया था, ऐसे नहीं करते प्रभुपाद, अरे मांस खाते नहीं आऊंगा, तो हम आज बैठ के यहां इस्कॉन का सत्संग सुनते। तो कितना टॉलरेंस था उनका। और दूसरा महीना कहां रहा है, एक मायावादी के संग, जिसने कहा महाराज आप खाइए पीजिए लेकिन बोलिए बिल्कुल मत, मुंह बंद रखिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा। वो मिश्रा जी का योग सेंटर में रहे, मिश्रा जी की मरने वाला था, प्रभुपाद भोजन बना के खिलाते थे, उसमें कुछ था, बोला बोलो मत, खाओ बहुत मौज करो, बोलना नहीं है। प्रभुपाद ने बोला, एक ने चिट्ठी लिखी प्रभुपाद जी को कि मैं बाहर ट्रेवलिंग करके प्रचार करना चाहता हूं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि आप ट्रेवलिंग करके अगर 12 रुपया कमा सकते हो, एक जगह बैठ के 13 रुपये कमा सकते हो अगर बुद्धि है तो। और फिर प्रभुपाद ने कहा, अगर मैं ऐसे घूमता रहता तो कुछ नहीं होता। मैं जब मैं आया आपके देश में सितंबर 65 में, लेकिन जब तक मैं जुलाई जुलाई 66 तक एक जगह बैठा नहीं तब तक कुछ नहीं हुआ, मैं बैठ गया तब कुछ हुआ है। तो एक जगह बैठ के कोई अपना सेंटर होना चाहिए, वहां से प्रचार करो। घूमने से बैठना ठीक है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, घूमने से कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा, बैठ के कुछ बनाओ। प्रभुपाद का को मूड को समझना चाहिए। वो सारे हिप्पी शराब पिया हुआ, शराब तो क्या, शराब तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो तो ऐसी ऐसी वो हीरोइन और एलएसडी और क्या क्या पी के है, और लड़की के गले में हाथ डाल के आते थे प्रभुपाद, उनको भी प्रसाद खिला के बिठाते थे, ये नहीं कहते तुम निकलो यहां से। उन्हीं को भक्त बनाया और उन्होंने सारा संस्थान का चारों ओर से प्रचार किया। तो प्रभुपाद के मूड को और मिशन को समझना चाहिए। ये इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए फेनेटिज्म ज्यादा हम में आती रहे, बहुत फेनेटिक हम तो होते जा रहे हैं, अकोमोडेटिंग नहीं। शास्त्र पढ़ेंगे, प्रभुपाद के मूड को समझेंगे, तभी हम हर गांव में हर शहर में प्रचार कर सकते हैं। अभी तक तो मॉरिशस में बहुत से गांव हैं जहां हमको प्रचार करना, तो पूरी दुनिया में कितना बड़ा काम हमारे लिए रहा हुआ है। बहुत ज्यादा काम हमको अभी करना है, ऐसे नहीं है कि काम सब समाप्त हो गया। हर एक विलेज तक पहुंचना है, हर एक गांव के अंदर प्रचार करना है। तो इसलिए हमारे को मूड और मिशन प्रभुपाद का समझना चाहिए। जो पुराने भक्त हैं उनके ऊपर स्ट्रक्चर, उनको नेम में चलाने के लिए शक्ति कर सकते हो, नए जो आते हैं उनसे प्रेम से कैसे उनको समझना है, वो भी बहुत बड़ी बुद्धिमानी। तो दोनों एस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो आइए भगवद गीता के श्लोक का जिसका हमने पढ़ना था आज, उसका अध्ययन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। नंद गोप कुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत अच्छा श्लोक है प्रचार के लिए, फॉर प्रीचिंग। थर्ड चैप्टर 10th वर्स, तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा। यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा। प्रोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविषद्वम् एषवोऽस्त्वइष्टकामधुक। ये भी श्लोक पढ़ते हुए हमको याद आता है कि 5 साल से ज्यादा इस कान में जो है उनको सारी भगवद गीता याद होनी चाहिए। और नहीं है इसका मतलब कहीं कोई हमारे अंदर शिक्षा में गलती है, 700 श्लोक 5 साल में नहीं याद हुए, इसका मतलब हमने कुछ तैयारी नहीं की है। यही तो हमारा, कम से कम जो ब्राह्मण प्रचार के लिए हैं, उनको ये श्लोक और उनके एक एक श्लोक का अर्थ बाय हार्ट आना चाहिए। एक आदमी लड़ाई के मैदान में लड़ने चाहे जाए, उसके उसकी बंदूक घर से नहीं ले जाए तो किसी काम का है क्या? हाँ, माया से लड़ने के लिए जाए और भगवत गीता के श्लोक नहीं याद है तो फायदा क्या? तो ये बहुत जरूरी है कि हमको इसका ठीक तरह से अध्ययन करना चाहिए। सह, सह का मतलब साथ, अलांगवित, सह यज्ञ, यज्ञ के साथ, यज्ञ के साथ, प्रजा, प्रजा सृष्टवा। प्रजा किसको कहते हैं? प्रजा का मतलब जन समुदाय, देवता और मानव भगवान ने उत्पन्न किए। सृष्टवा, सृष्टवा का मतलब उनकी सृष्टि की, ही क्रिएटेड, क्रिएटेड द होस्ट ऑफ डेमीगॉड्स एंड ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विथ यज्ञ। तो भगवान ने जब मानव बनाया तो उसके साथ यज्ञ को उनके साथ में दिया, ठीक है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, प्रजा की सृष्टि के साथ भगवान ने यज्ञ भी किया, यज्ञ भी किया, फिर क्या? प्रोवाच, प्रवचन किया। प्रोवाच का मतलब प्रवचन किया। किसने? प्रजापति ही, जिसने, जो प्रजा का पति है, जिसने प्रजा को उत्पन्न किया, उसने फिर ये प्रवचन किया। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अथवा भगवान विष्णु ने ये प्रवचन किया और ये इंस्ट्रक्शन दिया। क्या? अनेन, इस यज्ञ के द्वारा। अनेन, अनेन मतलब इस यज्ञ के द्वारा। प्रसश्वध्वम, प्रास्पर हो जाओ, आप सुखी हो जाओ। क्या है ये यज्ञ, क्या करेगा? एष अस्त इष्ट काम दुख, इष्ट काम दुख, इष्ट मतलब आपकी जो चाहना है, काम दुख का मतलब पूरी करेगा ये यज्ञ। भगवान ने जब हमारी सृष्टि की तो उसके साथ यज्ञ को दिया और फिर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा आप सुखी रहो। ये सरल इसका अर्थ है, ठीक है। अब अंग्रेजी में इसका मैं पढ़ता हूं, प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन आप सुन लीजिए। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generation of men and demigods along with sacrifice for Vishnu, Yajna, and blessed them by saying, Be thou happy by this Yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. तो एक बात सिंपल ये समझना है कि भगवान ने हमको आदेश दिया, अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो यज्ञ करना चाहिए। बहुत सरल बात है, यज्ञ करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने भावार्थ में, हम इस पॉपर्ट में पहली लाइन लिखी है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। द मटेरियल क्रिएशन बाय द लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स विष्णु इज ए चांस ऑफर्ड टू कंडीशन सोल्स टू कम बैक होम, बैक टू गॉडहेड। ये सृष्टि भगवान ने इसलिए की है कि बद्ध जीव वापस भगवान के धाम, अपने घर जा सके। इसका मतलब हम सब जो यहां दुनिया में आए हैं, ये क्यों भगवान ने यहां भेजा है? कि हम वापस भगवान के घर जाने, अपने घर जाने, भगवान के पास जाने के लिए रास्ता ढूंढे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन है आपके पास कपड़े धोने के, है ना? कंपनी ने वॉशिंग मशीन क्यों बनाई है? कपड़े धोने के लिए ना। भारत में एक आदमी के घर में 10-12 गाय थी, घर में वॉशिंग मशीन आई, माता जी ने रात को दही जमाया, सुबह मशीन में डाला, चलाया और मक्खन निकल के आया। उसी वॉशिंग मशीन से वो मक्खन निकाल रही, काम तो वही कर रही है, घूमने से मक्खन निकल गया। लेकिन मक्खन निकालने के लिए तो वॉशिंग मशीन नहीं बनी है ना, कपड़े धोने के लिए बनी है। लेकिन उसने काम ये कर लिया उसका, और कम काज कर रही थी। हम उधर बात कर रहे थे, ये माइक्रोफोन काहे के लिए बना है? आवाज को बढ़ा के किसी अच्छे काम में लाने के लिए ना।
इसको भी डंडा करके किसी का सर के अंदर मारेंगे तो भी आदमी का सर फूट जाएगा, लेकिन इसके लिए डंडा तो नहीं बनाया। ये जो डंडा है काय के लिए बनाया है? हाँ, इस माइक्रोफोन को पकड़ने के लिए ये डंडा बनाया है। क्या करना है? हाँ, छोड़ दो बेचारे को आराम करने, गर्मी थोड़ी होने दो, तपस्या होना भी जरूरी है। हरे कृष्णा। लंबे होने का भी फायदा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ये माइक्रोफोन, ये डंडा काहे के लिए बना है? ये डंडा क्यों बनाया और ये डंडा क्यों बनाया? इसको पकड़ने के लिए ना। अब इसको उठा के बाहर किसी का सर फोड़ दे, इसके काम का तो नहीं है ना ये, लेकिन सर तो फूट सकता है, आदमी मर भी सकता है ना, तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इस काम के लिए नहीं बनाए। तो ये दुनिया काय के लिए भगवान ने बनाई? भोग करने के लिए। दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं ये आप देख लीजिए। क्या कर रहे हैं? खा पी के मौज कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना। तो इस काम के लिए तो भगवान ने दुनिया नहीं बनाई है। इसका मतलब जिस काम के लिए भगवान ने दुनिया बनाई है वो उसका फायदा नहीं ले रहे, वो अपने लिए नई दुनिया बना रहे हैं। कैसी नई दुनिया बना रहे हैं? कोई गधा बनने की तैयारी कर रहा है, कोई कुत्ता बनने की तैयारी कर रहा है। किसने बोला ऐसे कैसे बोलते हो भाई? इस दुनिया में आप लोग कभी देखा है कोई आदमी बिल्कुल नहीं समझे, 10 बार बोलो फिर उसको बोलते हो बिल्कुल गधा है, बोलते हो ना? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये आदमी नहीं यार, गधा है। तो तुम किसी को गधे का जन्म दे सकते हो? भगवान नहीं दे सकता है। क्या सारे दिन कुत्ते की तरह झगड़ा करते रहते हैं है? कहते हैं बच्चे लड़ते, क्या कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो? बोलते हैं घर में बच्चों को ना, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो? कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ते हो? बोलते क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान में बोलते हैं कुत्ते बिल्ली की क्यों लड़ते हो, या कुछ बोलते हैं ऐसे? तो इसका मतलब आप पहले से उनको जन्म दूसरा दे ही रहे हो। तो भगवान को इतना काम करने में कौन सी बात? आप जितनी बुद्धि नहीं है भगवान की, उसको दोबारा कुत्ता बना देगा, वो अपना काम करता रहेगा। वो ये पानी के ऊपर वो क्या क्या करते हैं? सर्फिंग उस पर उपाधि देखा, बोला ये क्या कर रहे हैं? बोला ये पानी के ऊपर ऐसे। बोला फिर मानव का जन्म खराब क्यों कर रहे हैं? मछली बन जाए अंदर घूमते रहेंगे? मानव का जन्म इतना पूरा खराब करके और फिर क्या करना है? बोलो पानी के ऊपर ऐसे तैर रहे हैं, यही मुसीबत करनी थी, तो आदमी का जन्म क्यों खराब कर रहे हो? 50 साल तपस्या योग अभ्यास करने के बाद एक आदमी वापस आया, बोला क्या तुमने कमाया? बोला इस पानी के ऊपर मैं चल के जा सकता हूं। बोला चाराने की कमाई की तुमने 50 साल में। बोला क्यों? चाराना मतलब 1/4 था रुपया 25 सेंट। बोला वाय? बोला इतने में नाव में मैं उस तरफ चला जाऊंगा। वाई यू वेस्टेड योर टाइम? ये तो कोई भी नाव में चढ़ के 25 पैसे में जा सकता है, वाई यू वेस्टेड 50 ईयर जस्ट फॉर दिस पर्पज? पानी के ऊपर चल के जाओ या नाव में जाओ, फर्क क्या पड़ता है? टाइम क्यों खराब किया इतना 50 साल? तो ये सोचना है कि अगर भगवान ने ये सृष्टि इसलिए की है, हम तो किसी कर्मों के कारण पड़े थे, लेकिन भगवान ने हमको उठाया और एक मौका दिया कि आप वापस मेरे पास आ जाओ, इसीलिए भगवान ने सृष्टि कही करुणा करके, आउट ऑफ मर्सी एंड कंपैशन, दया करके भगवान ने हमको एक मौका दिया कि आप वापस मेरे पास आने का साधन ढूंढ लो। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम भौतिक जगत में बद, लिखा है फॉर कंडीशन सोल, मतलब बद जीव। तो किस चीज से बंधे हुए हैं? हम प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। हमको बंध के किसने रखा है? प्रकृति के 3 गुणों ने। रस्सी कोई होती है ना, रस्सी रोप, वो जब 3 रोप से बनती है, जैसे माता जी चोटी करते हैं ना, 3 करते हैं ना, एक बीच में 2,
उसको खींचने से उखड़ती नहीं है, अकेले बाल को खींचे तो निकल आएगा, लेकिन वो तीन वाला होता है ना, वो बहुत, दैट रोप इज वेरी स्ट्रांग। तो ये तीन गुणों वाली रस्सी से हमको बांधा गया है, हमने अपने आप को बांधा है। किसने बांधा है? हमने खुद ने बांधा है, किसी और ने नहीं बांधा है हमको, किसी और ने नहीं बांधा है, हमने अपने आप को बांधा है। ये बात समझ रहे हो? हमने अपने आप को बांधा है। ये घर मेरा है, तो इस घर में मेरापन की, मेरापन माने मेरा है, इट इज माइन, ये रस्सी हमने डाली है। ये घर हमको जानता है क्या? हाँ, आप घर बसे बाहर चले जाएं और घर के अंदर कोई कोई चोर आ जाए तो ये कहेगा घर के, अरे बाबा तुम बाहर जाओ, तुम्हारा इसमें क्यों आयो, ये तो फलाने के घर से बोलता है। हाँ, तो आप घर मेरा है मेरा करके आप मर जाओगे, लेकिन नहीं, घर आपको जानेगा भी नहीं, पहचानेगा भी नहीं कि आप कौन हो। सच है कि झूठ है? जिन जिन चीजों को हम अपना मान के बैठे हैं वो हमको नहीं जानती। गाड़ी मेरी है, हमने पकड़ के रखा है मेरी है, लेकिन गाड़ी हमको नहीं जानती। कोरोई बैठ के चलाए, कोई और बैठ के गाड़ी को चला के जाए, गाड़ी बोलेगी मैं नहीं चलूंगी? बोलेगी? हाँ, चली जाएगी ना। तो हमको जानती है वो? नहीं जानती है। हम उसको पकड़ के बैठे हैं, ये मेरी गाड़ी है, मेरा घर है। हमारे साथ कोई यहां इस दुनिया से जाएगा? हाँ, एक भी आदमी इस दुनिया से हमारे साथ जाएगा? हाँ, गुरुजी के पास एक लड़का आता था पढ़ने के लिए, पढ़ने मतलब भगवत गीता सीखने के लिए। घर वालों को डर लगा कि ये साधु बन जाएगा, तो घर वालों के पास कौन सा बड़ा हथियार है बच्चे को सत्संग से भगाने का, उसकी मंगनी कर दी, एंगेजमेंट कर दी। तो लड़का 15 दिन आया नहीं, 15वें दिन आया, महाराज ने बोला बेटा सत्संग में नहीं आते हो? बोला महाराज मेरी मंगनी हो गई, मेरी एंगेजमेंट हो गई। महाराज ने कहा बेटा अब आप हमसे गए, अभी हमारे काम के नहीं हो, फिर भी आने सत्संग सुनना लाभ होगा। 2 महीने नहीं आया, फिर एक दिन आया, बेटा 2 महीने नहीं आए। बोला बाबा मेरी शादी हो गई। बोला अब माँ बाप से गए, नाउ यू आर नॉट ऑफ एनी यूज फॉर योर मदर एंड फादर, अब माँ बाप के काम के नहीं रहे। सच्चा झूठ है? माँ बाप सारी उम्र पैसा इकट्ठा करते हैं, लड़के की शादी करेंगे, सारी उम्र की कमाई लगाई, लड़के को शादी किया, शादी के बाद अपनी पत्नी को लेके लड़का ही चला गया दूसरे घर में, वो सामान ही सारा गया माता पिता का। अब बेचारे बैठ गए, कोई हमारे को देखभाल करने वाला नहीं, जो था वो लगाया और वो भी चला गया। ऐसे ये झूठ है? सच है? हाँ सच है ना। बोल अब तुम माँ बाप के काम के नहीं हो। एक बार से एक 8 महीने के बाद आया, अरे इतने दिन लगाए, मेरे को बेटा हो गया। महाराज ने बोला बेटा तुम अपने आप से गए अब, नाउ यू आर नॉट यूजफुल फॉर यूर सेल्फ। सुबह से बच्चे को उठा के जाओगे इम्यूनाइजेशन के लिए, शाम को बच्चे को अस्पताल दिखाने, अभी तुम्हारे अपने लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, नाउ यू आर लॉस्ट फॉर यूर सेल्फ। सत्संग में आया? बोला मैं कैसे सत्संग में आऊं महाराज, मैं घर से निकलता हूं, पत्नी बोलती है कि आप जाते हो तो बच्चा रोता है, मैं आता हूं तो। महाराज ने कहा ये सब बातें हैं, भगवान के अलावा और कोई साथ नहीं देने वाला। बोला महाराज इतना मुझसे प्रेम करते हैं? महाराज ने ठीक है, ये पुड़िया ले जाओ, मेडिसिन देता हूं, तुम खा के सो जाना, तुम्हारा दिल बंद हो जाएगा चलना, लेकिन तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारे कानों से सुनते रहोगे, तुम जाओ सो जाओ, फिर देखना। ये तो दवाई खाया और सो गया, सो गया, न दिल चल रही है न सांस चल रहा है, रोना धोना शुरू हो गया, बच्चा है का क्या हो गया। माँ कहती है अरे अच्छा था सत्संग में जाता था महाराज के पास, अभी तो हमने यहां रखा, हमारे काम में नहीं आया, चला गया, बाप रो रहा है, पत्नी रो रही है। गुरु महाराज चल के आए वहां से, साधु हुआ महाराज आइए आइए, आपका शिष्य है, देखो भगवान ने हमसे छीन लिया, आपके पास आता था हमने रोका, लेकिन अब हमारे काम का भी नहीं रहा। महाराज ने बोला क्या हो गया? बोला देखो प्राण निकल गए। महाराज ने ऐसे झोले में देखा, बोला एक दवाई है हमारे पास, हमारे गुरुजी ने दिया था, कोई खाएगा वो तो मर जाएगा लेकिन ये लड़का उठ जाएगा। पिताजी की तरफ देखा, बोला आपका बेटा है, आप तो अब 80 साल के हो गए हो, 80 ईयर्स तो हो गए, अब तो वैसे आज नहीं तो कल मरना ही है, आप खा लो आपका बेटा उठ जाएगा। पिताजी बोलता है मैं तो खा लूं बच्चे के लिए, लेकिन मेरी पत्नी को कौन देखेगा, ये विधवा हो जाएगी। माँ की तरफ बोला आप खा लो माता जी, बेटा उठ जाएगा। बोला बेटे के लिए प्राण देना मेरी इच्छा है, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति को कौन देखेगा। नहीं खाया। पत्नी को बोला अब तुम्हारा जीवन तो समाप्त हो गया, सती होना था, वो नहीं तो ये खा लो, कम से कम तुम्हारे बच्चे को देखभाल तो करेगा। मैं बच्चे की देखभाल मैं कर लूंगी, लेकिन ये पुड़िया नहीं खाऊंगी। अब गुरु महाराज ने कहा चलो मैं ही खाता हूं और क्या करूं, मेरा शिष्य था। अपने बोला जय गुरुदेव, गुरु महाराज की जय, मरने के लिए गुरु। गुरु महाराज की जय, महाराज आप खा लीजिए। महाराज ने पुड़िया खाई, पुड़िया में तो कुछ नहीं था, ग्लूकोज डला हुआ था। महाराज पुड़िया खा के बाहर निकले और लड़का उठ के बैठ गया। अरे जीता हो गया, बाप बोलता है मेरा बेटा है, माँ बोलती मेरा बेटा, पत्नी बोलती हमारा जीवन बच गया। वो तो सब सुन रहा था, सबने जो कहा था वो तो सब सुन रहा था। वो उठ के माँ बाप को पांव पड़ा, पत्नी को बोला देखो मैं पहले सत्संग सुन के आता हूँ गुरु महाराज से, बाद में आपसे बात करूंगा। उठ के निकल गया, बोला मेरा सत्संग मत बंद करो, आज मुझे पता चला कि असली मेरा कौन हितेश है, मेरे को कौन जानता है, कौन मेरा मेरे साथ चलने वाला है, आप में से कोई नहीं चलने वाले हो। ये बात ठीक तरह सच्ची को समझ लेना चाहिए, इस दुनिया से कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, जिसको हम अपना मान के बैठे हैं वो कोई अपना नहीं है। प्रभुपाद ने अपने जीवन में कविता में लिखा था मेरे पिता मुझसे इतना स्नेह करते थे कहाँ चले गए, ये तो सिर्फ नाम बचे हैं केवल लेने के लिए, वो तो चले गए, अब किस किस के ऊपर विश्वास करें, इस दुनिया में तो कुछ भी रहने वाला नहीं। तो ये सब बातें कहने से कि हम बंद गए हैं जिन चीजों से, वो हमको जानती भी नहीं है, हमारे साथ कोई भी नहीं चलेगा, लेकिन जो हमारे साथ चलता है सदा के लिए भगवान परमात्मा के रूप को, उसको हम नहीं जान रहे, जिसको जानना चाहिए उसको नहीं जान रहे हैं, और जिसको नहीं जानना चाहिए उसको पकड़ के बैठे हुए। जो हमारा साथ नहीं देगा उसको हमने अपना बना रखा है, जो हमको कभी नहीं छोड़ता है हमारा साथ, उसको हम भुला के बैठ गए। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं इसलिए कि इस भौतिक जगत में लोग बंध गए हैं, वो क्यों बंध गए हैं, क्योंकि भगवान को भूल गए, हमारा जो भगवान से संबंध है उसको हम भूल गए हैं, इसलिए हमने दुनिया को अपना समझ के रखा है। और ये मंदिर बनाना, ये सत्संग करना सिर्फ इसलिए है कि हम वापस जान जाएं कि हमारा संबंध भगवान के साथ है, कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, तो वो हमारा नित्य सौहृद है, ऑलवेज वेल विशिंग फ्रेंड, सुहृद सर्वभूतानाम, वो हमारा हितेशी है, हमारा भला चाहने वाला एक वही है, ये हम जान लें। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये हमारा रिश्ता हम कैसे जान सकते हैं भगवान के साथ, जो नित्य रिश्ता है जिसको हम भूल गए हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है उसको भूल कर हम इस दुनिया में बंध गए हैं, तो उसको वापस हम अगर रिवाइव करेंगे तो फिर बंधन से छूट जाएंगे, तो रिवाइव कैसे करेंगे, हाउ टू रिवाइव दैट रिलेशन, शास्त्र और साधु, भगवान ने कृपा करके शास्त्र और साधु दिए, शास्त्र दिया जिसके से हमारा, शास्त्र और साधु ऐसे हैं जैसे समुद्र के अंदर किसी को नेविगेशन करना है तो उसके पास शिप के ऊपर कैप्टन होना चाहिए और मैप होना चाहिए, किसका, सी का मैप होना चाहिए, जैसे आपके मॉरिशस में किसी को आना है ना, तो बीच में वो क्या है पहाड़ है, पानी उसके सिर्फ उसके अंदर से कोई जगह है, सिर्फ वहां से आ सकता है, हर जगह से नहीं आ सकता है। मैप अगर नहीं है, ये क्या कहते हैं उसको आप, रेफ क्या कहते हैं वो, क्या है, कोरल रीफ, तो उसके अंदर से नाव तो नहीं जा सकती है ना बीच में। तो जिसके पास मैप होगा वही आ सकेगा ना। तो समुद्र में नेविगेशन करनी है तो आपको मैप होना चाहिए सारे सीज का, और साथ में अच्छा कप्तान होना चाहिए। ऐसे भाव सागर है ये भी, इसके लिए जो मैप है वो शास्त्र है और गुरु कैप्टन है। ये दो होंगे तब भाव सागर से हमारी ये शरीर रूपी नैया पार होगी। इस शरीर को भागवत ने बोट बोला है, ये बोट है, इसका कैप्टन होगा और शास्त्र होगा। शास्त्र मैप है, कैप्टन गुरु है, ये दोनों इस शरीर के द्वारा आत्मा को भवसागर से पार ले जाएंगे। तो साधु और शास्त्र, इन दो से हम जान सकते हैं हमारा भगवान के साथ संबंध। तो भगवान के साथ संबंध जानने के लिए इन साधु के संग में शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। फिर प्रभुपाद ने यहां लिखा है, शास्त्र का भगवत गीता है जैसे शास्त्र, तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है मुझे जानो, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद। तो भगवान को जानना शास्त्र का संदेश है। फिर भागवत से प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण प्रजापति है, यहां लिखा है ना प्रजापति उवाच, तो प्रजापति को कोई ब्रह्मा ना समझ ले, प्रजापति तो बहुत ब्रह्मा जी ने प्रजापति पैदा किए, ऐसे प्रजापति सब है, लेकिन शास्त्र में आदि प्रजापति भगवान विष्णु साक्षात है। तो प्रजापति शब्द की पुष्टि करने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए प्रभुपाद ने, श्री प्रभुपाद जी भागवत के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय से एक श्लोक कहते हैं कि भगवान हर चीज का पति है, यहां तक के प्रजापति भी भगवान को ही कहते हैं। सात्वताम पति, अपने भक्तों का पति है। एक सन्यासी को बुलाया किसी प्रोग्राम में, कहा महाराज आप सभापति बनिए। बोला कान पकड़ा, बोला कुछ भी बन सकता हूं लेकिन पति किसी का नहीं बनूंगा। सभापति का मतलब प्रिजाइड ओवर, तो उसको हिंदी में बोलते हैं सभापति। उसको पति से इतना भय लगा, बोला किसी का भी पति नहीं बनूंगा मैं। लेकिन भगवान यहां कहते हैं मैं सबका पति हूं। सातवताम पति ही, श्रेय पति ही, यज्ञ पति ही, प्रजापति ही, सब मैं हूं। और फिर भगवान कहते हैं यज्ञ करने के लिए भगवान ने कहा है, और ये यज्ञ क्या करेगा, यहां एक लाइन लिखा है इसको भी सुन लीजिए। The Lord created this material world to enable the conditioned soul to learn how to perform यज्ञ। भगवान ने यज्ञ कैसे किया जाए ये सिखाने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए कैसे किया जाए, क्यों किया जाए पहले, Why should we do यज्ञ, उसके लिए लिखा है For satisfaction of विष्णु। यज्ञ भगवान विष्णु की सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहिए, संतुष्ट क्यों करना चाहिए। हमें क्या लाभ है, So that while in the material world they can live very comfortably without anxiety। तो यज्ञ करने से हम इस दुनिया में सुखी रहेंगे, कोई भी चिंता नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई एंग्जाइटी नहीं होगी। अब दुनिया में हमको परेशानी है ना, दुख है ना, एंग्जाइटी है ना, सुख नहीं है ना, क्यों, क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहा। यज्ञ करने से आपका दुख दूर हो जाएगा, चिंता मुक्त हो जाओगे और सुखी हो जाओगे। और आगे लिखा है प्रभुपाद जी, दे लिव वेरी कंफर्टेबली विदाउट एंग्जाइटी, आफ्टर फिनिशिंग दिस प्रेजेंट मटेरियल बॉडी दे कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, और शरीर छोड़ने के बाद अब भगवत धाम चले जाएंगे। यज्ञ करेंगे तो यहां सुखी रहेंगे और संसार की यात्रा पूरी करके भगवान के धाम चले जाएंगे। तो यज्ञ करना चाहिए ना, तो कौन सा यज्ञ करना चाहिए, इसको बताते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं यज्ञ करने के लिए संकीर्तन यज्ञ, इस कली युग में संकीर्तन यज्ञ ही यज्ञ है। इसका अर्थ यह है, इसको ऐसे समझना चाहिए, करंसी, जब यहां फ्रेंच का राज था तो फ्रेंच का करंसी चलता होगा, ब्रिटिश राज था तो पाउंड चलता था, अब मॉरिशन राज है तो रुपया चल रहा है। तो हर एक गवर्नमेंट का और हर समय की करंसी अपनी होती है, तो कलयुग की करंसी जो है, जो एनकैश होती है, वो संकीर्तन यज्ञ है। और किसी करंसी को यूज करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, कि यही करंसी कलयुग में चलती, तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ उसी भगवान ने जिसने यज्ञ करने का आदेश दिया श्री कृष्ण ने, वही भगवान चेतना रूप महाप्रभु के रूप में आके यज्ञ करना सिखाया कि संकीर्तन यज्ञ करो। तो हमको कौन सा यज्ञ करना चाहिए संसार में सुखी रहने के लिए? संकीर्तन यज्ञ। और भगवान श्री कृष्ण ने एक और यज्ञ भी भगवद गीता में बताया है, चौथे अध्याय में 14 यज्ञ है, 13-14 यज्ञ करने का विधान बताया है। फोर्थ चैप्टर में 13-14 यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, प्राणायाम यज्ञ है, अर्थ यज्ञ है, श्रोत्र इंद्रियाणि अन्य संयाम अग्निश जुवते, ये ब्रह्मचारियों का यज्ञ है। लेकिन इतने यज्ञ नहीं कर सकते हैं, इसलिए 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जाते हुए एक आसान यज्ञ बता दिया, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञों में जप रूप यज्ञ हूं। तो हमको रोज जप रूप यज्ञ करना चाहिए, अकेले जब बैठते हैं तो जप रूप यज्ञ करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी विभूति है, ये 10 भगवद गीता के 10वें अध्याय में ये यज्ञ कहा गया है जप को। ये जप यज्ञ अकेले के लिए है, और परिवार के लोग जब सब घर में बैठो भोजन करने से पहले तो बैठ के कीर्तन करो, ये संकीर्तन यज्ञ, साथ बैठ के कीर्तन करना। भगवद गीता जप यज्ञ की बात करती है, और श्रीमद् भागवत कहती है नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्। ये लास्ट वर्ष है भागवत का, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का आखिरी श्लोक है नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्। भगवान के नाम का कीर्तन सारे पाप को नाश करने वाला है। सारे वेदों का सार मैंने देखा है और उसका सार यही निकला है कि संकीर्तन करना चाहिए। तो ये श्लोक के आधार पे हम लोगों को कह सकते हैं भगवद गीता में भगवान ने यज्ञ करके सुखी रहने का साधन बताया है, और यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण को बुलाने का खर्चा करने का जरूरत नहीं है, घी को खराब करने का जरूरत नहीं है, घर में धुआं करने का जरूरत नहीं है, केवल जवान से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस ये दो काम शास्त्र में कहे हुए हैं, एक स्वयं साक्षात श्री कृष्ण ने कहा है, दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, और प्रभुपाद ने भगवद गीता से भी संकीर्तन यज्ञ को पुष्टि करने के लिए 9वें अध्याय का 14वां श्लोक बोला है, सततम कीर्तन यंतो माम यतसंस्कृतव्रता, वो श्लोक कोट किया है। तो शास्त्र के आधार पर प्रचार करने में सुखी रहना चाहते हो, एंग्जाइटी से मुक्त होना चाहते हो तो यज्ञ करो भगवान कहता है, और यज्ञ करने में खर्चा लगता है, अपनी जबान से भगवान का नाम उच्चारण करो, ये यज्ञ आपको इष्ट काम दो के ये काम धेनु है, ये आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगी और भगवत धाम की प्राप्ति भी कराएगा। तो ये श्लोक का भावार्थ है, बहुत सुंदर श्लोक है प्रचार करने के लिए। स यज्ञ सृष्टा प्रजापति प्रोवाचम सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसृष्टम इष्ट्वा स्थिष्ट काम दुक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक प्रचार के लिए है। फिर धन्यवाद करते हैं निष्ठा मोर शेखर प्रभु तुष्टि और उनकी माता, मैंने पूछा नाम, बोला हम सब मम्मी बोलते हैं, धनंजय के बोला हम सब मम्मी बोलते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उन्होंने आप सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण के कथा कीर्तन के लिए आमंत्रण किया और हमारे लिए घर के दरवाजे खोले और हमारी सेवा का अवसर दिया, इनका धन्यवाद। हरे कृष्ण, कीर्तन कीजिए, संकीर्तन का अनुभव लीजिए, और भक्ति जीभा से शुरू होती है, जीवादो जीवान से भक्ति शुरू होती है, और दो ही काम है जबान के, भगवान का नाम जपना और प्रसाद खाना। तो अभी पहले कीर्तन करो और प्रसाद खाओ, यहाँ से भक्ति शुरू करने का अनुभव करो। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। म्यूसी 59 मिनट्स 44 सेकंड, 1 घंटे से कम है, जैसे यूजुअली 40 मिनट्स मेरा।